परम पूज्य 105 एलक उदार सागर जी महाराज के अमृत वाणी का श्रवण कर रहे थे। थोड़ा सा अगर आपके बीच में जगह है तो आगे और आ जाइएगा, वहां से भी आवाज आ रही है। पुरुषों से भी निवेदन है कि वे भी थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको भी बैठने की पर्याप्त व्यवस्था रहे। कल दोपहर 2 बजे श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में श्री दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा का जुलूस प्रारंभ होकर सराफा चौक, चिंतामन चौराहा, इतवारा, मंगलवारा, हनुमानगंज, जुमेराती, लोहवेला, रोहतौगा, जैन धर्मशाला पर समाप्त होगा, जहां मुनि संघ के आशीष वचन एवं भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक और पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। पुरुषों से निवेदन है कि वे श्वेत धारण करके आए और महिलाएं केसरीय वस्त्र धारण करके श्री जी की पालकी के साथ चले। और 17 तारीख को जैसा कि आपको विदित है मुनि संघ के पावन सानिध्य में भोपाल जैन समाज का सामूहिक क्षमा याचना का कार्यक्रम आयोजित होगा। स्थान यही सावरकर चौक, प्रातः 8:30 बजे। हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रदेश के साले शिक्षा मंत्री माननीय श्री मुकेश नायक जी। इन्हीं सूचनाओं के साथ बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि संघ की। अब मैं परम पूज 108 क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु के साथ करवत प्रार्थना करता हूं कि आज के आकिंचन धर्म पर अपने मंगल में आध्यात्मिक सारगर्भित प्रवचनों से हम सबको प्रताप करें परम पूज 108 क्षमा सागर जी महाराज।
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय में परिवर्तित हो गया था और क्षमा के साथ साथ हमारे भीतर अनायास ही विनय आना भी शुरू हो गई थी। और जहां विनम्रता होती है वहां सरलता भी होती है, होनी ही चाहिए, तभी विनम्रता शोभा पाती है। तो हमने अपने जीवन में उस सरलता को भी प्रवेश दिया था। जो व्यक्ति जितना सरल होता है वो उतना ही पवित्र भी होता है। और इस तरह हमने अनायास ही सरलता पाकर के पवित्रता भी पा ली थी। और जीवन में पवित्रता जिसके भी आ जाए वो सच्चाई को जान लेता है। और जैसे ही हमारे जीवन में सच्चाई का एहसास हमें होता है, हमारा जीवन जितनी लापरवाही से हम जी रहे होते हैं हम उस लापरवाही को छोड़ देते हैं और अपने जीवन को आत्मनियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। वही आत्मनियंत्रण उस सत्य के बाद हमारे जीवन में घटित हुआ। हमने वो दिन भी अपने जीवन में व्यतीत किया है, आत्मनियंत्रण का दिन। और जब व्यक्ति अपने आप को बहुत नियंत्रित कर लेता है तब उसकी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। जो इच्छाएं उठ चुकती हैं उनकी बात नहीं है, जो भी इच्छाएं उठी नहीं है वे इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। इच्छाओं के निरोध रूपी तप उसके जीवन में घटित हो जाता है। जिस व्यक्ति की जितनी कम इच्छाएं होती हैं चीजें उतनी ज्यादा मालूम पड़ने लगती हैं। जिसकी जितनी इच्छाएं चीजें बहुत होने के बाद भी वे चीजें संतोष नहीं दे पाते, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसको सारी चीजें बहुत बहुत मालूम पड़ने लगती हैं। और फिर हमने जो हमें ऐसा लगने लगा कि ये सब जो मेरे पास मैंने जोड़ के रखा है वो अतिरिक्त है, वो अधिक है, तो हमने देना शुरू कर दिया था। जब अतिरिक्त मालूम पड़ा तो हमने देना शुरू कर दिया। और ऐसा दिया कि अपना तो हित हुआ ही, दूसरे का भी हित होना शुरू हो गया। तपस्वी व्यक्ति के द्वारा अपने आत्मा के हित के साथ साथ प्राणी मात्र का हित होना शुरू हो जाता है। यही त्याग धर्म की उपलब्धि है। और एक दिन जब त्याग करते करते अपने आप ही एहसास होने लगे कि किस चीज का त्याग, यह था क्या मेरा जिसका मैं त्याग कर सकता था, यह मेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन इस बात के एहसास होने लगता है आज का दिन वो दिन है। अपने भीतर एक क्षण के लिए भी यदि हम ये एहसास कर पाते हैं कि यह हम लेकर के कुछ नहीं आए थे, यह हमारा कुछ भी नहीं है, तब जो भाव हमारे भीतर घटित होगा उसी भाव का नाम आकिंचन है। हम यहां अपना स्वामित्व चीजों पर, व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं। हम यहां चीजों के कर्ता बन जाते हैं, व्यक्ति के जीवन के कर्तृत्व को हम अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं। यह हमारा स्वामी बना, कर्ता बना और चीजों का भोक्ता बना जिस दिन समाप्त हो जाता है हम अकेले हो जाते हैं। अकेले होने का मतलब ही इतना है कि मैंने अपना स्वामित्व हटा लिया है, मैंने अपना कर्तृत्व हटा लिया है, मैंने अपने भोक्तृत्व को अलग कर लिया है, मैं अकेला हो गया। अकेला चलोगे, अकेले ही चला जा सकता है। और चलता भी कोई अकेला ही है, कितना भी कोई भीड़ में क्यों ना चले, पर पहुंचते सब अकेले अकेले ही है। थोड़ी देर के लिए कि हम साथ हैं, ठीक ऐसे ही जैसे ट्रेन में दो दिन का सफर करते वक्त किसी का साथ मिलता है, पर उतरते तो अपने अपने ही स्टेशन आने पर। यह बात जुदी है कि दोनों को एक ही स्टेशन पर उतरना हो तो जिंदगी की यात्रा में तो यह संभव है, लेकिन इस जन्म मरण की संसार की यात्रा में यह संभव नहीं है कि दो लोग एक साथ मर सके। यह सबको अकेले अकेले ही जन्म लेना पड़ता है, अकेले अकेले ही मरना पड़ता है, इस बात का एहसास से भी हो जाता है। तब उसको कहते हैं कि हमारे जीवन में आकिंचन घटित हो गया। बहुत बड़े राजा थे, शायद आपने उनकी घटना सुनी हो, उनको दाह ज्वर हो गया था, तड़पते थे, ज्वर तो था लेकिन दाह बढ़ती थी, ऐसा ज्वर था। उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप लगाने की व्यवस्थाएं करी गई, लेकिन चंदन कितनी शीतलता दे पाएगा ये सब हम जानते हैं। न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांग बंधु न चहार यस्टवा यथा मुनेस्ते नगवाक रश्मया शमन गुगर्भाष। भगवान, मैंने चंद्रमा की चांदनी से शीतलता पाके देख ली, चंदन से शीतलता पाके देख ली, गंगा के शीतल जल में अवगाहन करके देख लिया, लेकिन जो शीतलता मुझे इन सब से नहीं मिली वो आपके वचनों के अपने जीवन में धारण करने से मिलती है। और जब उन राजा को दाह ज्वर के उपचार के लिए चंदन की व्यवस्था की जा रही थी तो हजारों उनकी रानियां चंदन को घिसने में लगी थी, पर मुश्किल यह थी कि जैसे जैसे वो चंदन अधिक से अधिक लोग घिसते थे वैसे वैसे आवाज बढ़ने शुरू होती थी, क्योंकि सबके हाथों में चूड़ियां थी, उनके घिसने से वे बरसती थी और उनकी आवाज से भी राजा को तकलीफ होने लगी। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इतना शोर कैसे है। लोगों ने कहा कि आपके लिए दाह ज्वर के उपचार हेतु चंदन की व्यवस्था की गई है, सब महारानियां इस काम में लगी हुई हैं, वे अपने हाथ से चंदन घिस रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो लेकिन आवाज बहुत आती है, मुझे पीड़ा होती है इस आवाज को सुन करके। महारानी तक बात पहुंची और थोड़ी देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। राजा ने कहा कि क्या चंदन घिसा जाना बंद हो गया? मंत्री ने कहा कि चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, पर फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? बोले महारानी ने सब ने अपने हाथ में एक एक चूड़ी ही डाल रखी है, बाकी चूड़ियां अलग कर दी है, अब आवाज नहीं आती है। राजा को इस बात का एहसास हो गया यदि एक होगा तो आवाज नहीं आएगी, जो आवाज ये द्वंद दो के होने की वजह से है, और मैं और ये शरीर दो अलग अलग ही हैं, इस शरीर को मैंने अपना मान लिया है, इसी बात की पीड़ा है, मैं छोड़ता हूं, अगर जीवन रहा तो इस ज्वर से मुक्त हो गया तो मैं एकाकी विचरण करूंगा, मैं जैसा जन्म लिया था वैसा यथाजात होकर के एकाकी निर्दंत होकर के विचरण करूंगा। उसी क्षण महाराज ने इस तरह की प्रतिज्ञा कर ली और कहते हैं कि रात होते न होते सुबह सूरज की पहली किरण के साथ महाराज दाह ज्वर से मुक्त हो गए और दीक्षित होकर के और अपने आत्म कल्याण के लिए निकल गए। यह आकिंचन धर्म है जहां हम समस्त प्रकार के स्वामित्व से ऑनरशिप हम अपनी छोड़ देते हैं, जहां हम ट्रस्टीशिप अंगीकार कर लेते हैं, वहां से आकिंचन की शुरुआत होती है। यहां मेरा कुछ नहीं है, यहां जो कुछ भी है वो सबका है और सबका अपना अपना है, बस इसके माने सिर्फ इतना ही है। मेरे यहां कुछ नहीं है, सब सबका है और सब सबका अपना अपना है, अपने सुख दुख के सब जिम्मेदार हैं, मैं अपने सुख दुख का जिम्मेदार हूं और यहां जो अन्य है वे अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे एकत्व और अन्यत्व की भावना से युक्त जो जीवन है वो आत्मचिन्ह है। अकेलेपन ये शब्द है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसके कई मायने निकलते हैं। इंग्लिश में तो दो अलग अलग शब्द लिए गए, अलोननेस और लोनलीनेस। दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के मायने अकेलेपन है। लोनलीनेस में हम अकेले की पीड़ा से ग्रसित होते हैं, लोनलीनेस वो कहलाती है कि जहां हम किसी के वियोग की पीड़ा से अकेले हो गए और महसूस कर रहे हैं कि कोई होता मैं कितना अकेला छूट गया, फिर जिस जिसको अपना माना वो शोर मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं हूं जिस जिसका साथ देता हूं, जिस जिसको अपने साथ लेता हूं, वो थोड़ी दूर साथ चलता है फिर या तो पीछे छूट जाता है या अपना रास्ता ही बदल लेता है। मैंने कितनी कितनी बार किस किस को साथी बना करके देखा है, लेकिन वो साथी भी कितनी दूर तक साथ देता है, मरघट तक भी साथ देता है, लेकिन इसके बाद तो उसे रुकना ही पड़ता है। तभी जो इस तरह की अकेलेपन की फीलिंग है वो लोनलीनेस है, वो अकिंचन धर्म नहीं है, वो भी एक अकेलापन तो है, वो वियोग का अकेलापन है। और अलोननेस, आई एम सफिशियंट फॉर योर सेल्फ, माई सेल्फ, मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, ये जो एक पूर्णता का एहसास है जिस अकेलेपन के पीछे कि मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना कि मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरा मेरे लिए क्या कर सकता है, बेटा आखिरी समय पानी पिला सकता है, एक टैबलेट दे सकता है, सेवा कर सकता है, सांस तो नहीं दे सकता, यह उसकी मजबूरी है, मैं इस मजबूरी को समझ गया हूं। यहां हर व्यक्ति इस तरह मजबूर है, इससे अधिक साथ कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता और स्वामी स्वयं हूं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। यह आकिंचन है, यह आकिंचन का भाव है, यह अकेलेपन का, यह अलोननेस है, लोनलीनेस नहीं है। आपने कभी इस तरह के अलोननेस को फील किया? शायद किया। कभी जीवन में ऐसा मौका आया हो कि जब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और हम अपने लिए पर्याप्त हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं। बहुत मुश्किल है जो समस्त परिग्रह का त्याग कर चुकता है, जो इतनी तपस्या से गुजर चुकता है, उसके लिए भी इस तरह का भाव बहुत दुर्लभ है। चीजों के अभाव में उनके अभाव से ग्रसित होकर अपने को अकेला समझना ये बिल्कुल जुदी चीज है, और अपने भीतर इतने फुलफिल हो जाना कि चीजें होते हुए भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, इसका नाम अकेलापन है। मुझे याद आती है वो घटना अपने जीवन की। मैंने जीवन के बहुत अलग अलग तरह के दिन देखे हैं, मेरी उम्र बहुत बड़ी नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे अनुभवों से गुजरा हूं। '86 में जब आचार्य श्री के आज्ञा से पहली बार उनके साथ 6 साल चतुर्मास करने के बाद 7वां चतुर्मास कढ़ाकोटा में हुआ था, दूर था वो मंदिर, लगभग शहर से 1.5 किलोमीटर दूर तो था, और वहां आसपास कुछ भी नहीं था। उस एक मंदिर में अकेले दो हम लोग साधु रहा करते थे। इतवार का दिन था, आज भी है, और बुखार बहुत तेज हुआ, पर प्रवचन तो होना था। मैंने उनको महाराज को कहा कि आप प्रवचन करके आइए, पंडाल इतना दूर था जितना कि मैं यहां चल करके आया हूं। उन्होंने कहा कि आपको अकेला छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, इतने लोग आए हैं, हम सबके लिए बहुत जरूरी है प्रवचन। वो चले गए। उस समय ये लोग जी ब्रह्मचारी थे। मैंने कहा मैं बैठा हूं। मैंने कहा आवश्यक नहीं है, एक दिन तो सुनने मिलता है, सुनकर क्या हो। मैं अकेला रह गया उस पूरी प्रदक्षिणा के भीतर, बहुत बड़ी प्रदक्षिणा है मंदिर में, और बुखार ने बढ़ना शुरू किया। मैं आपको फीलिंग बता रहा हूं, और बुखार इतना अधिक बढ़ा कि शायद कानों की कंडीशन थी कि मैं, मुझे ध्यान नहीं है कि क्या होने को है। पर मैं अपने पास जहां भी रहता हूं हमेशा से आदत में रहा कि एक कलम और एक कागज तो होता ही होता है। मैंने पहली बार चटाई से बाहर मुंह निकाल करके सब दूर देखा था कि कहीं कोई नहीं है, और अपने सुख और दुख के लिए मैं यहां अकेला हूं। और तब पहली बार आज भी वो लिखा हुआ रखा है कि अभी तक कहता था कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन आज कहता हूं कि हां सचमुच अपने सुख दुख के लिए हम अकेले ही हैं। यह कहना बहुत आसान है कि कोई किसी का नहीं है, ये तो हम कभी कभी गुस्से में भी कह देते हैं, लेकिन अपने सुख दुख के लिए हम अकेले हैं इस तरह का एहसास उन क्षणों में ही हम करते हैं, तब भी वो क्षण हमारे जीवन में उस धर्म को प्रकट करने में सार्थक हो जाते हैं। बहुत साहस चाहिए भैया, अकेला होने के लिए बहुत साहस चाहिए, और वो भी भीड़ के बीच अकेला एहसास करने के लिए तो बहुत साहस चाहिए। हजारों लोगों के बीच भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है कि ये मेरे दुख में सहयोगी होंगे, ये मेरे सुख में सहयोगी होंगे। मेरा सुख मेरे आत्माश्रित है, मेरा दुख भी मेरे आत्माश्रित है। ये विविधता, यही इसी का नाम आकिंचन है। ये बहुत स्वाधीन है। आकिंचन स्वाधीनता की साधना है, आकिंचन परावलंबन से बचने की प्रक्रिया है। आकिंचन के मायने ये नहीं है कि घर परिवार और समाज से अलग थलग आउटसाइडर होकर के खड़े हो जाने का नाम आकिंचन नहीं है। इन सब के बीच भी, इन सब के सहयोगी होकर के भी अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार मैं हूं, इस तरह की भावना पाना, इसका नाम ही आकिंचन है। अपने अहंकार और ममकार को विसर्जित करने पर ही यह बात संभव हो सकती है। बहुत पहले एक राजा ने सोचा था कि मैं ऐसे धर्म को अंगीकार करूं, और किसी साधु के पास पहुंच गया था। साधु ने कहा अकेले होकर के आना, अभी भी तुम्हारे साथ है, पूरा काफिला लेकर के आए हो। राजा ने कहा छोड़ करके आऊंगा, सबको छोड़ करके आया। तब भी साधु ने कहा कि अभी भीड़ साथ में है। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। साधु ने कहा कि भीतर झांक के देखो, भीतर अभी शेष है, भीड़ अभी बाकी है, अभी विचारों की भीड़ बाकी है। उसने कहा कि ये तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो फिर राजा आश्रम में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दो। इतना बड़ा राजा और झाड़ू लगाने का काम है। अब चूंकि आकिंचन धर्म को अंगीकार करने के लिए जो कुछ भी कहा जाए सब करेंगे, आश्रम के और साथियों को भी लगा कि थोड़ा दूसरा काम सौंप देते, पर बाबा जी तो बाबा जी हैं, मन में आ गया तो झाड़ू लगाने का काम सौंप दिया राजा को। राजा ने झाड़ू लगाना शुरू कर दी, कचरा भर करके फेंकने चले जाया करते थे। रास्ते में एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति टकराया तो कचरे की टोकने नीचे गिर गई राजा के। राजा ने क्रोध में आके तुम्हें पर इतना जरूर कहा कि 15 दिन पहले तो तुम्हारी आंखें ठीक थी, अब तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, फूट गई क्या, दिखता नहीं है। 15 दिन पहले तो ठीक थी। वापस लौट करके आया तो साधु ने फिर सबके बीच में कहा कि मैंने कहा था ना अभी भीड़ इसके भीतर है। अगले 15 दिन के बाद फिर वही प्रक्रिया फिर से हुई कि कचरा फेंकने चला जाता था और फिर कोई व्यक्ति टकराया। अब की बार उस व्यक्ति से कहा कुछ नहीं उस राजा ने, सिर्फ आंख उठाकर उसकी तरफ देखा, हिराकत की नजर से देखा कि मैं राजा और मेरे को देख के भी नहीं चलता है, भले मैं कचरा फेंक रहा हूं पर राजा तो अभी भी हूं। वापस लौट के आए तो साधु ने कहा कि अभी देर है, अभी भी अकेला नहीं हुआ है। और तीसरी बार फिर वही प्रक्रिया हुई तो अब की बार जब टोकरी गिरी नीचे कचरे की तो बहुत विनम्र भाव से उस राजा ने उठा करके टोकरी में कचरा ज्यों का त्यों भरा, किस व्यक्ति से टकराया देखा तक नहीं उसकी तरफ और वापस कचरा फेंक करके आया। तब साधु ने कहा कि अब तुम योग्य हो, अब तुम्हें मैं आत्मचिंतन की साधना बता सकता हूं, अब तुम्हारे भीतर ये एहसास भी टूट करके गिर गया कि मैं राजा हूं। मुनि बनने के बाद इस एहसास से मुक्त होना पड़ता है कि मैं मुनि हूं, निर्ग्रंथ होने के बाद भी इस एहसास से मुक्त होना पड़ता है कि मैं निर्ग्रंथ हूं। कल तक इस बात का एहसास था कि मैं कपड़े पहने हूं, आज इस बात का एहसास है कि मैं कपड़े नहीं पहना हूं। कहते इन दोनों एहसास से परे होना पड़ेगा तब आत्मचिंतन होगा। न मैं कपड़े पहनता हूं, न मैं कपड़े उतार सकता हूं, मैं पहने नहीं सकता हूं तो क्या उतारूंगा। उस त्याग का भी त्याग कर देना, उस त्याग के अहंकार का भी त्याग कर देना, इसका नाम आत्मचिंतन है। मैं शेष रहा ही नहीं, यह एहसास भी मिट गया कि मैं हूं। मैं हूं तो फिर कहने की आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं हूं। कहते हैं जब इस तरह के एहसास से कोई व्यक्ति गुजरता है तब अकेला कहलाता है, ऐसा अकेलापन तो सिर्फ प्रणम्य है, ऐसे अकेले किसी व्यक्ति को हमने आज तक नहीं देखा। पर भावना तो यही भाते हैं कि जीवन में ऐसा अकेलापन भी आए कि हमारी अपनी एग्जिस्टेंस भी हमें सिर्फ फील हो और कहने का मन ना हो, किसी से कोई अपेक्षा ना हो। अपने सुख दुख के लिए जब हमने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया है तो किसी से क्या अपेक्षा रखी जाए, लेकिन किसी की अपेक्षा भी नहीं की जाए, यह भी ध्यान रखने की चीज है। दोनों एक साथ घटित होंगे। एक बहुत छोटी सी घटना सुनाऊं और बात पूरी कर दूं। उत्तम क्षमा मार्दो आर्जो भाव है, सत्य सोच संयम प्रत्याग उपाव है, और आत्मचिंतन ब्रह्मचर्य ये तो उपलब्धियां है। इस भी आत्मचिंतन और ब्रह्मचर्य इन दोनों पर कुछ भी कहना, बस ये समझ लीजिएगा कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी स्थिति है। ये चीजें तो फील करने की है, हमारी कितनी अपेक्षाएं होती हैं और हम कितना अपने सुख दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मान बैठते हैं और कितनी शिकायतों से हम भर जाते हैं, यह हम रोज फील करते हैं। गिला शिकवा और शिकायत टूट करके गिर जाती है जिस दिन, उस दिन आत्मचिंतन धर्म प्रकट होता है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं ऐसा आत्मचिंतन धर्म मेरे जीवन में भी नहीं आया। बहुत कठिन है ये, अकेले बाहर से लग्न हो जाना उतना कठिन नहीं है जितना कि भीतर की तमाम कषाय की ग्रंथियों को तोड़ करके और एकाकी अकेले खड़े हो जाना खड़ा बाजार में, दिए लुपाटी हाथ, जो घर फूटे आपने, चले हमारे साथ। इतना साहस चाहिए, अकेलेपन बहुत साहस का काम है। जहां बहुत असुरक्षा है, कहीं से कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन जो भी घटित होगा वो मेरे कर्मों के आश्रित है, मैं उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं मानूंगा। इस तरह का साहस, इस तरह की सामर्थ्य, इस तरह का आत्मबल जिसके भीतर प्रकट हो जाता है, जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रकट हो जाती, वो आत्मजन है। बहुत कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, ऐसा लगता है कि असहाय हो जाने का नाम आत्मजन है, कितने आत्म सामर्थ्य प्रकट कर लेने का नाम आत्मजन है, सबसे अकेले आउटसाइडर हो जाने का नाम आत्मजन है, नहीं वसुधैव कुटुंबकम सबको अपना मान लेने का नाम आत्मजन है। यहां किसी एक को अपना मानते हैं, वहां राग आता है, जहां सभी अपने हैं, अपने से पराया कोई है ही नहीं, जहां सब सबके हैं और सब अपने अपने हैं पर कोई किसी का नहीं है। बहुत आसान से लगने वाली चीज, लेकिन बहुत आसान नहीं है। जीवन में अगर इस तरह का कुछ घटित हो, तब जो एहसास होता है उसके लिए एक छोटी सी घटना सुनाओ और आज की बात इतनी ही पूरी। एक राजा था, उसके ऊपर विपत्ति आई, तो बहुत बड़े युद्ध के लिए उसे चुनौती दी गई। उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी, पर साहस तो था, आत्मबल तो था। उसने कहा कि अगर इस विपत्ति से मैं बच जाऊंगा तब तो ठीक है, लेकिन यदि इस विपत्ति से नहीं बच पाया तो किसी साधु के चरणों में जाकर के उस विपत्ति में शांत रहने का उपाय तो जाना ही जा सकता है। और वो साधु के पास पहुंचा और कहा कि अगर कभी जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो कोई ऐसा सूत्र वचन दे दीजिए जिससे कि शांति हो मन को। विपत्ति तो झेल लूंगा, पर तो विपत्तियों में मन को शांत रखना, इसके लिए कोई सूत्र? उस साधु ने कहा कि है एक सूत्र, युद्ध में वो हार गया और हार करके भागा। सैनिकों ने उसका पीछा किया, शत्रु के सैनिकों ने, और भागता चला जाता था, लेकिन आगे जाकर के एक स्थान पर उसका घोड़ा अटक गया। देखा कि सामने खाई है, अब बहुत मुश्किल में पड़ा। जीवन में कई बार उसके ऐसी विपत्ति आई थी और कई बार उसके मन में आया था कि आज मैं बहुत भाग निकाल के देख लूं, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था। आज जब देखा कि अभी तो खाई है, पीछे मुड़ के भागा जा सकता है, तो जैसे पीछे मुड़ के भागने लगा तो सैनिक निकट आने लगे। उसने कहा बहुत मुश्किल है, अब तो निकाल ही लेना चाहिए। और उसने वो बोध वाक जो एक छोटी सी कागज पर लिखा था वो निकाल के पढ़ा। इतना ही लिखा था, दिस डे विल आल्सो पास, ये दिन भी बीत जाएगा। एक क्षण के लिए बोध हो गया कि दिस डे विल आल्सो पास, ये दिन भी निकल जाएगा। वो दिन भी निकल गया जब मैं राजभवन में बैठा करता था, मेरा साम्राज्य था, वो सब छिन गया, वो दिन भी निकल गया। पर आज मैं दर्द दर्द की ठोकर खाता और आगे खाई और पीछे शत्रु के सैनिक, मेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बीत जाता है, ये सब भी निकल जाएगा, यहां मैं अत्यंत अकेला हो गया हूं। ऐसा विचार आते ही कहते हैं राजा बहुत शांत हो गया, इतनी विपत्ति के बीच भी वो एकदम शांत और सुखी महसूस करने लगा। और देखते देखते पता नहीं कहां से मित्र राज्य के सैनिकों की मदद आ गई और राजा की जान बच गई। और राजा ने फिर अपनी सेना संग्रहित करके उस पर शासन अपना फिर से वापस ले लिया, फिर से विजय पा ली। और एक दिन जब विजय पाकर के वापस अपनी राजधानी लौट करके आया और राज सिंहासन पर बैठ करके और बड़े हर्ष के साथ जश्न मनाया जा रहा था, तब राजा को फिर एक बार वो बोध वाक्य याद आ गया कि दिस डे विल आल्सो पास। राजा के चेहरे पर आनंद खिल गया। लोग सोचे कि शायद राजा अपने इस खुशी में, इस जीत की खुशी में खुश है, लेकिन अब राजा की खुशी कुछ और ही थी। वोट करके सिंहासन से खड़ा हुआ, अपना राज मुकुट सिंहासन पर रखा, अपनी पोशाक उतारी, सबको प्रणाम किया और कहा कि समझ में आ गया, एक वो दिन था मेरे जीवन में वो भी निकल गया, ये खुशियों के दिन ये भी निकल जाएंगे, इससे पहले कि मैं हर्ष और विषाद में डूबूं, मैं अपने आत्मानंद को पाने के लिए निकलता हूं, सबको मेरा आखिरी प्रणाम। और राजा आखिरी प्रणाम करके निकल गया था। ये आकिंचन की उपलब्धि है भैया, सबके बीच भी अपनों को अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता मानना और शांत भाव से सबके बीच रहकर भी अपने जीवन को बिताना, यही आकिंचन है। मैं भावना भाता हूं कि हम सब इस महान आकिंचन धर्म को प्राप्त करें, थोड़ी देर के लिए ही सही, एक 30 सेकंड के लिए भी अपने हाथ पर हाथ रख के इस बात का एहसास करें कि सचमुच अपना सुख अपने को ही भोगना पड़ता है, अपना दुख भी अपने को ही भोगना पड़ता है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिर क्यों हम दूसरे से अपेक्षा रखें, क्यों हम दूसरे को मजबूर करें कि वह हमें सुख दे, क्यों हम दूसरे को मजबूर करें कि वह हमारे दुख में कारण न बने। कोई सुख और दुख में कारण तो बन सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, वो हमारे ही कर्माश्रित है। ऐसा विचार करके हम सबके बीच शांत भाव से ऐसे विचरण करें जैसे दो दिन के लिए हम ट्रेन में बैठे हैं और अपना अपना स्टेशन आ जाने पर सबको उतर जाना पड़ेगा। मैं निकला, लोग एक एक करके मेरे पीछे होते चले गए, कुछ दिन कुछ लोग साथ चले, फिर या तो रुक गए और या उन्होंने रास्ता बदल दिया। मैं ये सोच के आगे बढ़ गया कि साथ चलने का सुख इतना ही होता है, इससे अधिक नहीं होता। अगर हम साथ चल रहे हैं तो जितने दिन साथ हैं साथ चलने का सुख ले लें, और जिस दिन पीछे छूट जाए उस दिन हम दुखी नहीं हों, क्योंकि कोई कितना साथ दे सकता है, मरघट के आगे सबको अकेले जाना पड़ता है। ऐसा विचार करके हम शांत भाव से अगर रोज रोज इस तरह की साधना करेंगे तो हमारे जीवन में आकिंचन प्रकट होगा। आज के इस आकिंचन धर्म की हमारे जीवन में उपलब्धि हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिए। आज मंगलम सागर मुनि
Bye.